रेडियो साई के हिंदी प्रसारण साई प्रेम वाणी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई में सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक से लिए गए उन अलौकिक प्रसंगों को सुनने जा रहे हैं जिनमें प्रशांति निलयम के निर्माण के बाद के वर्षों में मनाए जा रहे विभिन्न उत्सवों, कवि सम्मेलनों, संगीत समारोहों और विशेषतः नवरात्रि उत्सव का जीवंत वर्णन किया गया है। इसके साथ ही बाबा द्वारा वैकुंठ एकादशी के दिन अपने हाथों से अमृत का सृजन कर भक्तों को अमृत पान कराने के भी दुर्लभ प्रसंगों का आनंद लेंगे। आइए सुनते हैं प्रेम स्वरूप भगवान के प्रेम और आनंद से भरे इन प्रसंगों को।
वैकुंठ एकादशी के दिन का महत्व निराला ही है। अनेक वर्षों तक बाबा ने इस दिन अपने हाथों से अमृत का उद्भव किया और उसके बाद सब भक्तों में बांट देते। अन्य किसी भी देवालय में जो मिल न सके ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद को वैकुंठ एकादशी के दिन पुटपर्ती में बाबा के अमृत हस्त से हम सब पाते। सन 1958 की वैकुंठ एकादशी के दिन बाबा त्रिवेंद्रम में थे। संध्या समय भक्तों के साथ वे वहां से 7 मील के अंतर पर स्थित कोवलम समुद्र के किनारे बसे एक गांव में पहुंचे। किनारे किनारे काफी दूर तक चलकर वहां की समुद्र तट की रेत पर बैठ गए और भजन करने की आज्ञा दी। स्वयं भी 4-5 गीत गाए। 10-12 मछुआरे भी वहां आकर बैठ गए। बाबा ने रेत से कृष्ण कन्हैया की मुरलीधारी मुद्रा की श्री गंध से बनाई हुई अत्यंत सुंदर कलाकृति जो एक मूर्ति थी वह सृजित की। एक भक्त को राधा कृष्ण की मूर्ति जड़ित एक सोने की अंगूठी निकाल कर दी। फिर भजन हुए। बाबा जोर जोर से ताल दे रहे थे। सभी भक्ति की पुनीत गंगा में डूबे हुए थे। अचानक एक विशेष सुगंध से सब भक्त चेतन हुए। निश्चय ही वो मृत्यु लोक की सुगंध नहीं थी। किसी सुपरिचित पुष्प इत्र की भी वो सुगंध नहीं थी। तब बाबा ने कहां देख रहे हो, यहीं से इन्हीं हाथों से सुगंध आ रही है। और समीप बैठे लोगों को हाथ का स्पर्श कर देखने की भी आज्ञा दी। स्पर्श कर देखा तो कुछ चिकना सा था, सूंघने पर स्वर्गीय सुगंध थी। तब बहुतों को ध्यान आया कि उस दिन श्रीरंग में वैकुंठ द्वार खुलता है। ये उनके लिए भी द्वार खुलने पर अमृत मिलने का ही चिन्ह था। बाबा ने अपने दोनों हाथों को जोड़ पहले से ही झरते अमृत को एक चांदी के प्याले में भर लिया। प्याला भरने पर एक एक चम्मच अमृत अपने हाथों से प्रत्येक के मुख में डाला। भगवान नाम संकीर्तन सुनने के कौतूहल से आए उन मछुआरों को भी उस अमृत की प्राप्ति हुई। उस अमृत का स्वाद अवर्णनीय था। केवल मधुर सुगंध मात्र ही नहीं, उसके विषय में व्याख्या करने लगे तो मौन ही रहना पड़ता है। अनुभव ही भाषा बन जाती है, आनंद ही वर्णन की प्रस्तुति बन जाता है। नूतन वर्ष के दिन बाबा मीठा शरबत तैयार करवाकर उसमें अपने हाथों से निर्मित स्वादिष्ट सुगंधित पदार्थों को मिलाकर भक्तों में बांटते। मकर संक्रांति के दिन प्रशांति निलयम की गायों का श्रृंगार कर उनको रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित कर ढोल बाजे आदि वाद्यों के साथ जुलूस निकलवाते। पुटपर्ती के किसानों का शुभ दिन, जबकि गुड़ बनाने के लिए गन्ने का रस निकाला जाता है, वे सब निलयम में आकर बाबा के दर्शन करने के पश्चात ही भट्टी जलाकर गन्ने का रस गर्म करते। भक्तों के बच्चों के नामकरण, अक्षराभ्यास, उपनयन आदि मंगल संस्कारों के दिन बाबा स्वयं वहां जाकर आशीर्वाद देते। प्रार्थना मंदिर के पूर्व की ओर स्थित मंडप में प्रवचन, संगीत, कवि सम्मेलन आदि आयोजनों के लिए व्यवस्था की जाती। दीपावली के दिन प्रशांत निलयम के लोगों को आनंद ही आनंद रहता। पटाखे की विस्फोट ध्वनि, पटाखों के वर्ण विन्यास, फूलों के बाण तथा गेंद आदि के आकाशयान का ही चारों ओर नर्तन दिखाई देता। बाबा भी प्रशांत निलयम की छत पर फूलों के बाणों को एक पंक्ति में रखकर उनमें लगाए पटाखों को एक साथ ही सुलगाकर हंसते हुए सबको हर्षित करते। भक्तों के बच्चों को स्वयं पटाखे बांटकर सबको आनंदित करते। उन दिनों प्रशांत निलयम में प्रतिवर्ष 3 महोत्सव विशेष रूप से मनाए जाते, नवरात्र, महाशिवरात्रि और बाबा का जन्म दिवस। तिथि और नक्षत्रों की गणना कर भिन्न भिन्न संवत्सर में भिन्न भिन्न तारीख के दिन पंचांग रीति के अनुसार बाबा का जन्म दिवस मनाने में भक्तों को कठिनाई होगी, इस कारण प्रतिवर्ष नवंबर की 23 तारीख को ही जन्मोत्सव मनाया जाता है। नवरात्र का उत्सव अत्यंत वैभवपूर्वक बाबा के सान्निध्य में ही मनाया जाता। उन दिनों में प्रतिदिन प्रातः संध्या दोनों समय भजन पूजा आदि होते। दिन के समय पुष्पों से अलंकृत एक फूलों का वाहन जैसा बनाया जाता व पालकी में बाबा का जुलूस निकलता। विजयादशमी के दिन राम पूजा यथाविधि की जाती। कुछ ही वर्षों में इस उत्सव ने आदिशक्ति की आराधना का रूप ले लिया और बाबा ही आदिशक्ति हैं ये तत्व भक्तों ने भली प्रकार समझ लिया। दोनों समय महिलाओं द्वारा देवी पूजा के निमित्त कुमकुम अर्चन, विजयादशमी के दिन शिरडी बाबा का अभिषेक, संगीत नाटक आदि द्वारा सरस्वती जी की आराधना इत्यादि का भी आगे जाकर नियमित कार्यक्रमों में समावेश हो गया। उन दिनों के नवरात्रि के उत्सव का एक चित्र सन 1958 दशहरा महोत्सव की निमंत्रण पत्रिका को देखें तो स्पष्ट हो जाता है। प्रथम दिन प्रातःकाल में प्रशांति पताका उत्सव होता। सब भक्त स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान के स्मरण में प्रेमानंद से लीन हो उस कमल चक्र को घेर कर क्रमानुसार खड़े होकर मुख्य मंडप की ओर देखते हुए बाबा का ध्यान करते। बाबा सबको दर्शन देकर अभय हस्त से सबको हर्षाकर भक्तों द्वारा अर्पित फूल मालाएं आदि स्वीकार कर प्रशांति पताका का गूढ़ अर्थ समझाकर नाद स्वर, बैंड, शहनाई और घंटा घोष के मध्य निलयम के ऊपर स्थित ध्वजा स्तंभ पर पताका लहराते। कुमकुम पूजा द्वितीया तृतीया तिथि से प्रारंभ होकर दशमी तक चलती। गीता पारायण, भागवत पठन, प्रवचन सुबह शाम दोनों समय प्रस्तुत किए जाते। द्वितीया के दिन कार्यक्रम में समाज सेवा भी सम्मिलित रहती, अर्थात इस दिन सब भक्त श्रीमंत या धनवान, साधारण और निर्धन का भेदभाव भूलकर निलयम के चारों ओर के रास्तों की सफाई करते। संध्या समय सेवा धर्म पर बाबा का प्रवचन होता तथा उनकी आज्ञा से अन्य लोगों के भी प्रवचन होते। तृतीया का दिन बच्चों के लिए सुरक्षित होता। दिन भर लिखाई पढ़ाई, खेल, नाटक, नृत्य, भजन आदि का आयोजन होता। समीप के 4-5 ग्रामों से भी नन्हे नन्हे बच्चों सहित पंडरी भजन के झुंड प्रशांति निलयम में आकर झूम कर नृत्य करते। शाला के बच्चे, एनसीसी दल अपने अपने शारीरिक चमत्कार, पंजू नृत्य, बैंड आदि द्वारा बाबा को अपनी भेंट अर्पित करते। संध्या समय बच्चे अपनी माता के समान बाबा के सम्मुख भजन, कीर्तन, नृत्य, नाटक आदि प्रस्तुत करते। इन सब नन्हे मुन्ने बच्चों को अति प्रेम से प्रोत्साहन देकर उनके त्रुटियों को सुधार कर उनके मंच पर आने के भय का निवारण करते। बाबा बड़ी सहज रीति से उनकी गलतियों की ओर उनका ध्यान न दिलाते, बल्कि उनकी छोटी छोटी कुशलता युक्त कृतियों की प्रचुर प्रशंसा ही करने वाली साईं माता का वात्सल्य अवर्णनीय है। अंत में रंगमंच पर प्रस्तुत हुए प्रत्येक बच्चे को उसकी उम्र बुद्धि के अनुसार अपने हाथों से पारितोषिक प्रदान कर बाबा उन्हें आशीर्वाद देते। मां बच्चों के उस प्रेम पूर्ण मिलन को देख हम सब बड़े क्यों हो गए, ये मीठा अफसोस सब बड़ों के मन में उठ जाता। चतुर्थी के दिन कवि सम्मेलन होता। संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी आदि भाषाओं में भक्तों द्वारा रचित कविताओं तथा गीतों को बाबा के समक्ष अर्पण करने का समारोह। उन सबको बाबा अपने अमोघ अनुग्रह सहित प्रसाद रूप में पारितोषिक प्रदान कर संतुष्ट करते। कविम कविनाम बने बाबा के समक्ष उन्हीं की देन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का सुअवसर पाने वाले सब धन्य ही हैं। नवरात्र उत्सव के संदर्भ में 2-3 दिन संध्या समय बाबा भक्तों को संबोधित कर भाषण देते। इस प्रकार पाए ज्ञान धन को लेकर भक्त स्वग्राम लौटकर उनका मनन कर उनके अनुसार ही अपनी नित्य जीवनचर्या उन्नत पथ पर ले जाने में समर्थ होते। अनेक सरल, उद्देश्यपूर्ण एवं सुलभ युक्तियों को वे बांटते। षष्ठी और अष्टमी को मीरा भजन तथा वृंदावन भजन आदि के कार्यक्रम उन्हीं संप्रदायों के प्रतिनिधियों द्वारा चलते। इस नाम संकीर्तन के अमृत का रसास्वादन प्राप्त की हुई जीवा को युक्ति, निंदा व छल रूपी गंदे जल को चख ही नहीं सकती। सप्तमी के दिन अन्न संतर्पण होता। उस दिन प्रशांति निलयम विशेष आनंद उत्सव व उत्साह से शोभायमान होता। 4-5 हजार लोगों को पवित्र भोजन प्राप्त होता। तत्पश्चात 1,000 से अधिक निर्धन तथा असहायों को बाबा के दिव्य हस्त द्वारा ही वस्त्रादि का दान होता। बाबा के ही निर्णय से किसी को धोती तो किसी को साड़ी दी जाती। उन सबको अलग अलग बैठाकर प्रत्येक को नाम से बुलाकर दान देकर संभाषण भी कर हर्षित किया जाता। मैसूर से आए एक इंजीनियर ने एक बार बाबा से प्रश्न कर ही लिया, ऐसे वैभवशाली अन्नदान, वस्त्रदान आदि को पत्रिकाओं में क्यों प्रकाशित नहीं करवाते? उनको बाबा ने बड़ा गहरा उत्तर दिया कि आपका प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है। अपना परिवार अपने घर आकर भोजन करे तो पत्रों में ये समाचार क्यों छापा जाए? ये उत्तर सुनकर ये बाबा अन्य बाबाओं की तरह नहीं है, वरन सब स्वामियों की बुद्धि ठीक करने आए हुए प्रभु हैं। ये तथ्य सब ने जान लिया। अन्न संतर्पण के दिन बाबा अत्यंत उत्साहपूर्ण दिखते। एक जगह खड़े न रहकर वे उस दिन सबको अनवरत कार्य करते रहने की प्रेरणा देते। रसोई की देखभाल वे स्वयं करते। खाने के लिए लोगों को पंगत में बैठाकर स्वयं ही प्रत्येक पत्तल पर मीठी बूंदी परोसते। अपनी औषधि रूपी वाणी, दृष्टि के प्रकाश एवं कर कृपा को भी बाबा उस दिन मीठी बूंदी के साथ ही यथेष्ट रीति से परोसते। उस दिन बाबा भक्तों को समझाते, निर्धन जैसी शोचनीय स्थिति एवं रोग आदि से पीड़ा का मुख्य कारण अज्ञान ही है और आत्मज्ञान ही उनकी चिकित्सा है। दीन दलितों का समूह देखकर वे उसे सृष्टि की विविधता मात्र ही मानते। ऐसे लोगों को बाबा भोले, बुद्धि रहित तथा उचित मार्गदर्शन के अभाव से ग्रसित मानते। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि मुझे भली भांति स्मरण है, एक बार प्रशांति निलयम के सामने बांधे गए सब तोरण आदि बारिश में भीग कर तथा फटकर कांतिहीन हो गए थे। उसे देखकर बाबा ने हम सबको रात के 10 बजे बुलाकर भिन्न भिन्न वर्ण के कागजों से नए तोरण तैयार कर प्रशांति निलयम को अलंकृत करने की आज्ञा दी। हम में से 1-2 व्यक्तियों ने नाग भौं सिकोड़कर पूछा, कल क्या विशेष बात है स्वामी? गरीबों को अन्न ही तो प्रदान करना है। बाबा ने तुरंत ही कुछ क्रोधित दिखाई देते हुए कहा, इससे अधिक विशेष और क्या चाहते हो? कल उनके इधर आने के समय प्रशांति निलयम शोभायमान रहना चाहिए, कहकर बाबा ने हम सब के अंतर में स्थित संशय व मलिनता को धो डाला। बाकी दिनों में संगीत के समारोह होते, गायन, क्लेरियोनेट वादन, नाद स्वर गान आदि होते। बाबा के स्वयं कर्णप्रिय गीतों के गायक होने के कारण सब अपनी अपनी कला कुशलता की परीक्षा देने को उत्साहित व आतुर रहते। विजयादशमी के दिन विशेष प्रकार के अभिषेक पूजा आदि होते। पूरे 9 दिन महिलाएं विनय विश्वास युक्त पूजा कर अर्चित किए हुए कुमकुम एवं अपने अंतरंग में पल्लवित भक्ति के पुष्पों को उस दिन बाबा से स्वीकृत कराकर बाबा के ही हाथों शिरडी बाबा की मूर्ति का अभिषेक करवाती। प्रेम मात्र से सबका पालन कर सत्य साईं बाबा नवरात्रि उत्सव को माता के उत्सव के रूप में ही परिवर्तित कर देते। जय साईं राम।
अभी हमने सुना और आनंद लिया उन अविस्मरणीय दिनों का, जब उत्सवों और आयोजनों के माध्यम से प्रशांति निलयम न केवल भक्तों के लिए चुंबकीय आकर्षण का केंद्र बन गया, बल्कि भगवान के प्रेम ने भक्तों को बांधकर त्योहारों के उत्साह को भक्ति और श्रद्धा के स्तंभ से जोड़ दिया। निसंदेह ये भगवान द्वारा अगले अनेक वर्षों के लिए प्रशांति निलयम को संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनाने की दिव्य योजना का शुरुआती चरण था। जय साईं राम।